नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की बड़ी दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यिर्मयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर का दास यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की और राजा से कहा कि अपने आप को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन कर दे, परंतु उसने उसकी बात नहीं मानी और इसका परिणाम यह हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर उन्हें बंधुआ बनाकर ले गया। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अब यिर्मयाह जो बची हुई प्रजा है, बची हुई प्रजा को ठीक वही बताता है जो परमेश्वर चाहता है कि वे करें। तो आइए, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से यिर्मयाह नबी की पुस्तक में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन, जो दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है, प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हर एक के पापों को आप क्षमा करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, उनके जो भी जीवन में समस्याएं हैं, बीमारी हैं या किसी प्रकार का तनाव और दबाव है, पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आप उन्हें छुटकारा दें। अपने वचन के द्वारा बातचीत करें ताकि आज का समय निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। इस समय फिर से एक बार हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने वचन के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक उसके 42 अध्याय को निकाल लीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक 42 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यूं कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा, और तुम्हें न उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह उन्हें दंड नहीं देगा यदि वे उसकी आज्ञा मानेंगे। सच तो यह है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है, दंड देना तो उसके लिए विचित्र बात है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको भी आशीष देना चाहता है, परंतु वह चाहता है कि मैं और आप उसकी आज्ञा का पालन करें। यिर्मयाह की पुस्तक 42 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। यर्मिया वही कहता था जो परमेश्वर उस पर प्रकट करता था। परमेश्वर का परिशुद्ध वचन जो भला और प्रोत्साहन देने वाला होता था। मेरे मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि वे अब तो मानते होंगे कि यर्मिया परमेश्वर का वचन सुनाता था, क्योंकि उन्होंने उसे पूरा होते हुए देखा था, और आप सोचेंगे कि वे परमेश्वर पर विश्वास भी करते होंगे। परंतु परमेश्वर जानता है कि वे ऐसा नहीं करेंगे, अतः वह उन्हें चेतावनी देता है। यर्मिया की पुस्तक 42 अध्याय उसके 18 से 20 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा किया करेंगे, तुम इस स्थान को फिर ना देखने पाओगे। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। मेरे मित्रों, इस्राएलियों ने यर्मिया से कहा कि वह परमेश्वर से पूछे कि उन्हें क्या करना है। जी हाँ, उन्होंने अनुभव से भी कुछ नहीं सीखा। वे अब भी परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करेंगे। वे यर्मिया की बात नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र जाने की अनुमति नहीं दी, परंतु अब वे कहां जाएं? अतः वे मिस्र ही चले गए, और परिणाम क्या हुआ हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। यहां पर अध्याय 42 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 43 और 44 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है मिस्र में इसराइलियों के लिए भविष्यवाणी। जी हाँ, यह भविष्यवाणी की पुस्तक का छठा और अंतिम भाग है। यह भविष्यवाणियां यर्मिया के अंतिम दिनों की हैं, जब वह मिस्र में था। हम यहां पर देखते हैं कि यर्मिया की पुस्तक अध्याय 43 से अध्याय 51 तक यह चलती है। फिर अध्याय 43 और 44 मिस्र में प्रवासी इसराइलियों के लिए है। आइए हम देखें यर्मिया के संदेश का परित्याग। यर्मिया की पुस्तक 43 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब यर्मिया उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशाया के पुत्र अजरयाह और कारेह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यर्मिया से कहा, तू झूठ बोलता है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिया का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़ें और वे हमको मार डालें या बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाएं। मेरे प्रियो, ये लोग फिर वही बात दोहराते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर ने यर्मिया को यह वचन नहीं दिया है। उनकी समस्या यह है कि यर्मिया उनकी मन भावन बात नहीं करता है, जैसा वे चाहते हैं वैसा उनके लिए वह नहीं करता है। उन्हें यह आशा थी कि वह उन्हें मिस्र जाने को कहेगा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वे मिस्र ना जाएं। और यही कारण है कि लोग यर्मिया की बात को झूठा कहने लगे। यर्मिया की पुस्तक 43 अध्याय उसके 5 से 7 पद में लिखा हुआ है, पर कोरह का पुत्र योहनान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितर बितर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहिकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यर्मिया भविष्यद्वक्ता और नेरियाह के पुत्र बारूक को वे ले गए और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपनेस नगर तक आ गए। मेरे प्रियो, यहोनान और राजकुमारों ने शेष जनता को और यर्मिया को भी मिस्र जाने पर विवश किया। वे मिस्र में तहपनेस पहुंचे, जो उसी स्थान गोशेन के निकट है, जहां पर ये लोग एक जाति स्वरूप विकसित हुए थे। उन्होंने यर्मिया की इच्छा के विपरीत उसे जाने के लिए बाध्य किया, परंतु वह उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाता रहा। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि मिस्र प्रवास में इसराइलियों को यर्मिया की चेतावनी। यर्मिया की पुस्तक 43 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन तहपनेस में यर्मिया के पास पहुंचा, अपने हाथ में बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपनेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है चूना फेर के छिपा दे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वे फिर से मिस्र की ईंटों के भट्ठों के स्थान में थे। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा न मानना विकास में बाधक होता है। वे लौटकर वहीं आ गए थे जहां से उन्होंने आरंभ किया था। जैसा कि हम सब निर्गमन की पुस्तक के द्वारा से जानते हैं कि इसराइली मिस्र में बंधुए थे और वहां से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें बाहर निकाला, परंतु वे फिर से उसी देश में चले गए। हम यर्मिया की पुस्तक 43 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उन पुरुषों से कह, इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं बेबीलोन के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा, तब जो मरने वाले हों वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हों वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए हैं वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। वे नबूकदनेस्सर से बचने के लिए मिस्र को भागे हैं, परंतु परमेश्वर मिस्र को भी नबूकदनेस्सर के अधीन में कर देगा। यहां वे अपने देश से अधिक बुरी दशा में थे, वे यहां भी नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे, परंतु अपने देश से परदेश में। कहने का मतलब है कि वे अपने देश में नहीं परंतु दूसरे देश में होंगे। नबूकदनेस्सर उन्हें दासत्व में ले जाएगा और उन्हें गुलाम बनाएगा। मिस्र प्रवासी इसराइली परमेश्वर का त्याग करते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 43 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 44 से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 44 में मिस्र प्रवासी इसराइलियों द्वारा परमेश्वर की पूर्ण अवज्ञा का उल्लेख है। परमेश्वर फिर कहता है कि यहूदा पर आक्रमण और विनाश का उत्तरदायी वही है। आइए पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 44 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रिस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। परमेश्वर उन्हें दंड देने का कारण बताता है कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, क्योंकि वे उन देवताओं को धूप जलाते थे, उनकी उपासना करते थे, जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें नहीं बताया। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें दंड देता है जब हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 44 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जो इसराइल का परमेश्वर है यूं कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीता बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नष्ट किए जाओ और कोई ना रहे, क्योंकि इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नष्ट हो जाओगे और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नाम धराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। परमेश्वर के प्रेम का महान प्रकटीकरण है। वह अब भी उनसे लौट आने का आग्रह करता है। जी हाँ, परमेश्वर मुझे और आपको बार बार आगाह करता है, चेतावनी देता है, संकेत देता है कि हम उसकी ओर फिर जाएं। परंतु हम अपने पापों में उलझे रहते हैं। उनका दुष्ट उत्तर मनुष्य की महाभ्रष्ट अवस्था का बोध कराता है। जो जीवन वे जी रहे थे उससे परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। हम यिर्मयाह की पुस्तक 44 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनने की, जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि अब दंड के अतिरिक्त उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है। परमेश्वर उन्हें चेतावनी दे रहा है, उन पर अनुग्रह कर रहा है कि वे सुधर जाएं, परंतु वे कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, हम वही काम करेंगे जिसे हमने ठान लिया है। कई बार हम भी ऐसा ही काम करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार के विपत्तियों को इसलिए आने देता है ताकि हम परमेश्वर की ओर फिरें, अपने जीवन को जांचें, परंतु हम वही काम करते हैं जिसे हम करना चाहते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर को न चाहते हुए भी हमें दंड देना पड़ता है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 44 भी समाप्त होता है और हम अब अपने अध्ययन को अध्याय 45 से जारी रखते हैं, जिसका विषय है बारूक की भविष्यद्वाणी। बारूक यिर्मयाह का मित्र था जो उसके सहायक के रूप में काम करता था। जी हाँ, अध्याय 36 में हमने देखा था कि यिर्मयाह ने बारूक से भविष्यद्वाणी लिखवाकर यहोयाकीम के पास भेजी थी और यहोयाकीम ने उसे छुरी से काटकर आग में झोंक दिया था। यिर्मयाह बंदी गृह में रहते हुए जब अनातोत में जमीन खरीद रहा था तब बारूक ने ही उसके लिए सौदा किया था। उसी ने सब कागजी कार्यवाही पूरी की थी, जिसे हम अध्याय 32 में देख चुके हैं। अध्याय 43 उसके 6 से हमें पता चलता है कि बारूक को भी यर्मिया के साथ मिस्र ले जाया गया था। मित्रों, इस अध्याय में व्यक्त बारूक की भविष्यवाणी वास्तव में यहोयाकीम के राज्यकाल की है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यर्मिया की पुस्तक समय के क्रम में व्यवस्थित नहीं है। मेरे विचार में इससे भविष्यवाणी को यहाँ रखने में एक विशेष उद्देश्य है, बारूक को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ रखी गई है। परमेश्वर ने उस पर प्रकट कर दिया था कि यर्मिया का साथ देने के परिणाम स्वरूप उसका क्या होगा। अतः जब वह यहूदा की बची हुई जनता के साथ मिस्र जाने के लिए बाध्य किया गया, तब उसके लिए यह प्रोत्साहन हेतु था। जी हाँ, आइए हम पढ़ेंगे यर्मिया की पुस्तक 45 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब उसने उससे यह वचन कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है, मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। यहोयाकीम के राज्य काल में परिस्थिति बहुत बुरी थी, परंतु वह आगामी घटनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं थी। यहोयाकीम के बाद का युग वास्तव में बहुत ही बुरा समय था। यर्मिया की पुस्तक 45 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, तू यूं कह, यहोवा यूं कहता है, देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। मेरे प्रियो, यद्यपि परिस्थिति बहुत अधिक बुरी होगी, परमेश्वर बारूक पर प्रकट करना चाहता था कि परमेश्वर ही उसका उत्तरदायी है। परमेश्वर यहूदा की दुर्दशा का दोष अपने ऊपर में लेता है, अतः बारूक योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। यर्मिया की पुस्तक 45 अध्याय के 5 पद में लिखा है, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है, उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। यह भविष्यवाणी बारूक को युवावस्था में दी गई थी। परमेश्वर ने बारूक पर स्पष्ट किया कि देश के ऐसे गंभीर समय में वह अपने लिए ऊंचा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। वह कठिन समय देखेगा परंतु सुरक्षित पार हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुधि लेगा। जी हाँ, इस समय यर्मिया और उसका मित्र एवं सहायक मिस्र में हैं और वृद्धावस्था में हैं। उन्होंने देखा है कि परमेश्वर ने उन्हें बुरे से बुरे समय में भी कैसे संभाला है जिसमें वे जी रहे थे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 45 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को यर्मिया के पुस्तक अध्याय 46 से 48 तक के द्वारा जारी रखेंगे। इस अध्याय का विषय है मिस्र, पलिस्ती और मुआब के लिए वचन। यर्मिया को परमेश्वर के वचन की अवहेलना करने वाले बचे हुए यहूदावासी बलपूर्वक मिस्र ले गए। यर्मिया वहां विभिन्न देशों के लिए भविष्यवाणी सुनाता है। परमेश्वर बताता है कि मिस्र का भविष्य क्या होगा। यहूदा के बचे हुए नागरिक तो यह सोचकर मिस्र गए थे कि वहां उन्हें शांति और समृद्धि होगी, परंतु परमेश्वर कहता है कि वहां युद्ध होगा और नबूकदनेस्सर मिस्र को जीत लेगा, और ऐसा ही हुआ। यर्मिया की पुस्तक 46 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। दूसरे शब्दों में वे मिस्र से आशा न लगाएं, क्योंकि मिस्र हराया जाएगा। यर्मिया की पुस्तक 46 अध्याय के 19 पद में आगे लिखा है, हे मिस्र के रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोब नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। उन्होंने मिस्र पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना था, उन्हें परमेश्वर की आज्ञा माननी थी। इसके उपरांत भी यर्मिया शांति का संदेश सुनाता है। यर्मिया की पुस्तक 40 अध्याय के 27 और 28 पद में लिखा है, परंतु हे मेरे दास याकूब तू मत डर और हे इसराइल विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसे डराने ना पाएगा। हे मेरे दास याकूब यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है तो भी तेरा अंत न करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। मेरे मित्रों यदि आप इन दो पदों को पढ़कर विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन सत्य है तो आप कभी नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ने इसराइल का त्याग कर दिया है। परमेश्वर उन्हें दंड देने की बात तो करता है परंतु वह उनका अंत नहीं करेगा। पौलुस द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? इसे हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं। इसका एक उत्तर यह भी है, यदि हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं तो हमें उसके वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। मेरे मित्रों यहां पर अध्याय 46 समाप्त होता है और अब हम अपने अगले अध्ययन में अध्याय 47 में पलिस्तियों के लिए यर्मिया की भविष्यवाणी को देखेंगे। ये बचे हुए यहूदावासी बचने के स्थान की खोज में थे कि वहां चले जाएं। वे किस पर निर्भर करेंगे? कुछ देश तो ऐसे हैं उनके पहले से ही शत्रु थे, क्या वे उनके पास शरण खोजें? जी नहीं, क्योंकि पलिस्ती भी पराजित होंगे। तो मित्रों हम इसे अगले अध्ययन में देखेंगे। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। कृपया प्रभु की निकटता में बने रहें, उसके वचन पर विश्वास करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे, इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। श्रोताओ इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु प्यारे प्यारे।